हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अदिति और आज मैं आपके सामने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आई हूँ। ऑफ कोर्स हिंदुस्तान की एक ऐसी महिला जिन्होंने अपने वक्त से काफ़ी आगे होकर अपना नाम और हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में अचीव किया है। लोगों ने माना है कि हिंदुस्तान की संस्कृति जितनी सुप्रसिद्ध और जितनी कल्चर्ड है, वहाँ की औरतें भी उसी की तरह काफ़ी कल्चर्ड और टैलेंटेड और क्षमता धराती है कि हर चीज़ को वो अपने इस हिसाब से हैंडल कर सके। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ किरण मजूमदार शॉ की, मिसेस किरण मजूमदार शॉ, जिनका जन्म 23 मार्च 1953 को पुणे के महाराष्ट्र में हुआ था। उनका ब्रॉटअप बेंगलुरु, जिसको साइंस कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ऐसे शहर में हुआ था। अगर आपका ब्रॉटअप किसी ऐसे शहर में हो जहाँ पे साइंस की क्यूरियोसिटी बढ़ती ही चली जाए, लोगों में एक अलग सी क्यूरियोसिटी हो साइंस को लेके, तो ऑब्वियसली आपको अभी ऐसा हो जाता है कि हाँ यार, ये एक अच्छी चीज़ है, ये इसमें जाना चाहिए, हमें इसको ट्राई करना चाहिए, हमें इसे सीखना चाहिए, हमें इसे जानना चाहिए। ठीक उसी तरह उनको भी अपने बचपन से साइंस में काफ़ी क्यूरियोसिटी रही है और इस बात का उनके फादर ने उनको काफ़ी हद तक सपोर्ट किया। ऐसे पेरेंट्स हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। सपोर्टिव पेरेंट्स आर द रियल ब्लेसिंग्स फॉर द चाइल्ड। और ज़्यादातर पेरेंट्स अब तो ऐसा हो गया कि पेरेंट्स आर मोर कॉन्शियस, बट ये उस ज़माने की बात है जब लड़कियां ज़्यादा पढ़ा नहीं करती थी। पर उनके फादर, उनकी सोच उस वक्त से काफ़ी आगे की थी और वो हमेशा बिलीव करते थे कि हमें किसी भी इंसान को अपने हाफ नॉलेज के साथ जज नहीं करना चाहिए, जो कि वो गलत है। हाफ नॉलेज इज़ ऑलवेज डेंजरस। तो उनको लगा कि नहीं यार, मेरी बेटी अगर साइंस में इंटरेस्टेड है तो उसे पढ़ना चाहिए। और एक तरह से ये उनकी दिली इच्छा भी थी, क्योंकि उन्हें ये समाज की ये सोच जो थी कि भाई बेटा है तो पढ़ाई कराओ, अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ, अच्छे पोजीशन पे बिठाओ, और अगर बेटी है तो फिर उसे पढ़ने की क्या ज़रूरत है, शादी करके सेटल ही तो होना है। ये जो उस वक्त के समाज की जो सोच थी वो उन्हें पसंद नहीं थी और उन्होंने अपनी बेटी को बोला कि नहीं बेटा, दिखा दो दुनिया को कि बेटियाँ भी बेटों की तरह आगे बढ़ सकती है। और वो एक चीज़ उनको इंस्पायर कर गई कि नहीं, अब तो मुझे साइंस में ही अपना करियर बनाना है। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उन्होंने एक पॉइंट पे मास्टर ब्रूअर का कोर्स एज अ करियर अपने ज़िंदगी में लिया, चूज़ किया। और वो करने के लिए उनको बैलाराट यूनिवर्सिटी नियर मेलबोर्न, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, वहाँ पे जाना पड़ा। वहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग बात हुई कि इस पर्टिकुलर कोर्स में वो एक लौती लड़की थी, बाकी सारे लड़के थे। इस कोर्स में लड़कियां आती ही नहीं थी, उनको पता ही नहीं होगा या शायद उनको इम्पोर्टेंस ही नहीं मालूम हो कि एग्जैक्टली ये है क्या। उसके बाद वो कोर्स कंप्लीट होने के बाद वो हिंदुस्तान अपने कंट्री में वापस आ गई, क्योंकि उन्हें अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए कुछ करना था। अपनी सीखी हुई नॉलेज से, अपने ज्ञान से, अपनी प्रबल इच्छा शक्ति से अपने देश के लिए कुछ करना था। पर जब वो वहाँ यहाँ वापस आई तो उनको तो बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि कोई भी कंपनी, ब्रूइंग कंपनी, उनको एज अ मास्टर ब्रूअर एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी, जो कि वो पढ़ चुकी थी। उनको लगता था कि ये लड़की है, ये क्या कर पाएगी, इसको तो कंसल्टेंट की जॉब दे दो, वो उसी में खुश रह पाएगी। बट इनका निश्चय उत्तम था, इनका निश्चय तय था कि मैंने जो सीखा है उसी चीज़ को मैं अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करूँगी। और अगर मुझे हिंदुस्तान में वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो मैं हिंदुस्तान के बाहर जाके वो अपॉर्चुनिटी देखूँगी, पर मैं वही करूँगी जो मैं सीख के आई हूँ, जो मैं कर चुकी हूँ। तो उनको उस वक्त स्कॉटलैंड में अपनी मनपसंद एक जॉब मिल गई। बट किस्मत का ना अपना ही खेल होता है। आपको नहीं पता कि आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है, वो अपने आप चलता है, वो अपने आप आपके सामने अपने वक्त से आ जाता है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मिस्टर लेस्ली ऑचिनक्लास, हु इज़ द फाउंडर ऑफ आयरिश बायोटेक कंपनी, द नेम ऑफ द कंपनी इज बायोकॉन बायोकेमिकल, जिसको हम हिंदी में जैव रासायनिक बोलते हैं, वो हिंदुस्तान में अपनी कंपनी सेटअप करना चाहते थे। और उनको एक ऑनेस्ट और एक डेडिकेटेड इंसान की ज़रूरत थी, चाहे मर्द चाहे औरत, उनको ये जेंडर डिस्पारिटीज़ नहीं था, बट ये था कि एक व्यवस्थित इंसान जो काबिल कंधे बोल सकते हैं उनको, उस कंधों पे मैं ये जिम्मेदारी सौंपूँ। उन्होंने सर्च करना शुरू किया और उनके सामने किरण जी का नाम आया। उनको रेफरेंस बालाघाट यूनिवर्सिटी से किरण जी का मिला। उन्होंने किरण जी को कांटेक्ट किया तो किरण जी भी उस वक्त डायलिमा में थी कि चाह एक तो वो या तो वो स्कॉटलैंड चली जाए और अपनी मनपसंद जॉब कर ले, या फिर हिंदुस्तान जैसे देश में उस वक्त जब लोगों की सोच मर्द और औरत को लेके इतनी अलग थी, उस सोच को बदल के अपने देश में एक अलग नाम कमाए, एक अपने देशवासियों के लिए कुछ हटके कर जाए, उनकी भलाई के लिए कुछ कर जाए। उन्होंने काफ़ी वक्त भी लिया इस बात को लेके, बट अल्टीमेटली वो एग्री हो गए कि नहीं यार, ये ट्राई करना चाहिए, एटलीस्ट मैं नहीं तो और कौन। वो सोच के उन्होंने इस बात को एग्री कर लिया। इन द ईयर 1978 बायोकॉन बायोकेमिकल की इंडियन ब्रांच खुली एज अ जॉइंट वेंचर विथ आयरिश ब्रांच। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट महज 10,000 रुपये ही था, और जब ये कंपनी उन्होंने खोली थी तब किरण जी की उम्र महज 25 साल की थी। अब इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न तो अब आता है, जबकि कंपनी खोल चुकी है, कंपनी रजिस्टर्ड भी हो चुकी है, अब चाहिए कि हमें अपने लिए काम करने वाले लोग चाहिए थे उसमें। तो उन्होंने एक इंटरव्यू सेशन रखा कि भाई कौन कौन काम कर सकता है, जो भी अच्छे लोग थे उनकी नज़र में, उन्होंने उन सबको बुलाया इंटरव्यू के लिए। बट यहाँ पे तो उल्टा हो, उनका इंटरव्यू ले रहे थे जो इंटरव्यू देने आए थे, वो लोग किरण जी का रिवर्स इंटरव्यू लेना शुरू कर दिए थे कि भाई एक तो ये एक औरत है, ऊपर से ये एक स्टार्टअप है, तो क्या हमें जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, क्या हमें एनुअल अप्रिसिएशन मिलेगा, हमारा करियर क्या होगा इस कंपनी में ज्वाइन होने के बाद, ऐसा ना हो कि आज से कुछ साल बाद ये कंपनी बंद हो जाए और हमारा करियर डूब जाए। बट जो कि किरण जी का विजन एकदम क्लियर था, उन्होंने इन लोगों को कन्विंस कर लिया अपने साथ जुड़ने के लिए, अपने साथ काम करने के लिए। इसके बाद उनको एक और चैलेंज का सामना करना पड़ा कि हिंदुस्तान में उस वक्त कोई विमेन एंटरप्रेन्योर को बैंक लोन नहीं दे पा रहा था, क्योंकि उनको उसकी काबिलियत पे शायद भरोसा ही नहीं था। उनको ऐसा लग रहा था कि अगर ये बिज़नेस डूब जाएगा तो हमारे तो लोन के पैसे चले जाएंगे, और ये लड़की क्या हमें वापस दे पाएगी अगर कुछ नहीं किया तो भी। तो उनके पास दूसरा रास्ता ये था कि सप्लायर से बात करके क्रेडिट पे मटेरियल खरीदा जाए। तो उन्होंने किसी भी तरह सप्लायर को कन्विंस कर लिया कि भाई तुम मुझे मटेरियल दो, मेरे पास जैसे ही पैसे आएंगे मैं तुम्हें प्रोवाइड कर लूँगी, बट तुम्हें मुझ पे भरोसा करना होगा, तुम्हें मुझे क्रेडिट बेसिस पे मटेरियल देना होगा। सप्लायर भी एग्री हो गए। उसके बाद उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू की, और फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग रॉ पपीते की हुई, और उन्होंने उसमें से दवाई बनाई, जो कि पपीता एक डायबिटिक पेशेंट के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ माना जाता है, काफ़ी अच्छा फ्रूट होता है और हिंदुस्तान में उसके बहुत बड़े पैमाने पे खेती भी होती है। तो उन्होंने एक रॉ पपीते की में से अपना मेडिसिन बनाना शुरू कर दिया और फॉर्चुनेटली वो चीज़ काफ़ी आगे तक गई, काफ़ी अच्छी और काफ़ी बड़े पैमाने पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई, काफ़ी चल पड़ी जैसे बोल सकते हम। तो उसके बाद उनको रिस्क लेने में और अपने हिसाब से आगे बढ़ने की उनकी जो चाह थी वो बढ़ती चली गई। एक बोलते ना, आपको एक सक्सेस मिल जाती है वंस यू टेस्ट, इवन इट इज़ इन अ स्मॉल अमाउंट, बट इफ़ यू आर सक्सेसफुल तो आप उस चीज़ में आगे बढ़ते जाते हो, हमेशा आगे बढ़ते जाते हो। तो ये भी इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने एक साल ख़त्म होने के बाद बायोकेमिकल का हिंदुस्तान में अपनी एक साल की जितनी भी सेविंग थी वो सारी की सारी एक 20 एकड़ के लैंड में खरीदने में लगा दी। लोगों ने उनसे सवाल भी किए कि इतनी छोटी सी कंपनी है हमारी तो हम 20 एकड़ का जितना बड़ा लैंड क्यों ले रहे हैं इसके लिए। पर वो हमेशा कहती थी कि वो मानती है कि हमेशा बड़े सपने देखने चाहिए। आज भले ही कंपनी छोटी है, कल शायद काफ़ी बड़ी होगी, और उनकी ये बात भी सच हुई। आज की डेट में अगर आप देखें तो बायोकॉइन लार्जेस्ट ड्रग्स प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, मतलब सबसे बड़ी मेडिकल कंपनी है, और ना सिर्फ हिंदुस्तान की, एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है ये। और आज वही 20 एकड़ का लैंड 100 एकर्स ऑफ लैंड में तब्दील हो चुका है। बट इंसान का कैसा होता है कि हम ना हमेशा किसी भी चीज़ से या किसी भी इंसान से या किसी जगह से हमेशा इमोशनली अटैच्ड रहते हैं। किरण जी के साथ भी कुछ ऐसा ही है, वो आज भी वहीं पे बैठना पसंद करती हैं जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी इन द ईयर 1978, वही डेस्क, वही जगह, और इस जगह पे बैठे बैठे उनको इन द ईयर 1989 में पद्मश्री से नवाजा गया। उस वक्त की वो सबसे यंगेस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स थी जिनको पद्मश्री मिला था। और इसके बाद एक और चेंज कहानी में ट्विस्ट, इन द ईयर 1998 आयरिश कंपनी वालों ने सोचा कि भाई हम चेंज ऑफ ऑनरशिप कर लेते हैं, मतलब अगर किसी को लेना है फुल चार्ज सो दे कैन पे अस, वो जो शेयर्स जो बॉट बैक बोलते हैं उसको, वो खरीद ले हमसे और हम दे देंगे पूरा उनका शेयर। तो ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। उन्होंने अपने बायकॉन कंपनी के जितने भी शेयर्स थे सब उन्होंने खरीद लिए अपने हस्बैंड की हस्बैंड की मदद से, बट ऑफकोर्स दोनों ने मिल के खरीदे थे। और फिर तो वो सोलो ऑनर हो चुकी थी उस चीज़ उस कंपनी के, तो अब उनके लिए काफ़ी चीज़ें करना, पहले भी फ्रीडम तो थी बट अब जब चूँकि ये अकेले आप ही की कंपनी है, काफ़ी मैटर करता है कि वो चीज़ आप अपनी कंपनी में करो या किसी जॉइंट वेंचर में करो। उन्होंने काफ़ी हद तक इनोवेशंस चालू कर दिए, और इतना ही नहीं बट उन्होंने काफ़ी बड़े पैमाने पे काफ़ी नई नई टेक्नोलॉजी के साथ बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी में एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया। इसके अलावा उन्होंने अपनी कंपनी को एशिया का सबसे लार्जेस्ट इंसुलिन प्रोवाइडर बनाया, सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़े। और आज की बात तो ये है कि बायकॉन 85 कंट्रीज में से ऑपरेट होती है, 85 कंट्रीज दोस्तों, इट इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट। और अगर हम उसका एनुअल टर्नओवर देखें तो इट इज़ नॉट लेस देन $500 मिलियन $500 मिलियन। आप समझ सकते हो कि किस लेवल पे एक लड़की ने अपनी कंपनी को लेके गई। ये तो हुई बायकॉन की बात है। अब आते हैं इनके पर्सनल व्यू पॉइंट्स पे या पर्सनल सोच पे। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके बहुत ही करीबी रिश्तेदारों कैंसर सर्वाइवल्स हैं, और जो कि उन्होंने देखा है कि लोगों को कितनी तकलीफ होती है, उन्होंने एक चैरिटी का निर्माण किया इन द ईयर 2004, और उस चैरिटी के थ्रू उन्होंने एक 1400 बेड की कैंसर केयर सेंटर खोल दिया बेंगलुरु में, जिसके चलते वो लोगों का भी इलाज हो सके जो लोग कैंसर का इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते। उनका आज की डेट में मानना ये है कि इंडिया की सोच ओवर द डिकेट्स पिछले काफ़ी दशकों से काफ़ी हद तक बदली है। आज की डेट में एक विमेन एंटरप्रेन्योर होना कोई नई बात नहीं रह गई है। बावजूद उसके अभी भी हमें बहुत आगे जाना है, और वो स्ट्रांगली बिलीव करती है कि अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर दे दी जाए दोनों को, तो कोई भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है। और उनके एक बचपन की बात है जो उन्होंने अपने इस अपने इंटरव्यू में कही थी कि बचपन में उनको डॉक्टर बनना था। पर कभी कभी ना आपकी किस्मत आपको कुछ और ही दिशा में लेके जाती है। शायद उस वक्त आपको नहीं पता चल रहा है कि आप क्या कर रहे हो, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर सो मैनी ईयर्स, व्हेन यू लुक बैक, तो आपको लगता है हाँ यार कुछ तो चेंजेस हुए थे, और शायद वो मेरी भलाई के लिए थे। उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ, वो डॉक्टर तो नहीं बन पाई किसी कारणवश, बट आज वो जो बन चुकी है उनके आसपास उनके साथ डॉक्टरों की पूरी टीम काम करती है, और वो इस टीम की लीडर के तौर पे काम करती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं मानती हूँ कि किरण जी जैसे और भी हमारे देश में काफ़ी इंस्पायरिंग वुमेन्स हैं जिन्होंने अपने अपने फील्ड में काफ़ी कुछ अच्छा किया है। मैं इसी तरह जैसे आज किरण जी की स्टोरी लाई, आगे उनकी भी स्टोरीज लाती रहूंगी, और आशा करती हूँ कि आपको वो स्टोरीज पसंद आए, और आप भी कहीं ना कहीं अपने आप को, अपने आप में छिपी हुई एक किरण मजूमदार शॉ को ढूंढ पाए और अपनी एक अलग आइडेंटिटी बना पाए। क्योंकि मेरा ये बहुत दिल से दृढ़पने मानना है कि इंसान को अपने मरने से पहले कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिसे उसके जाने के बाद दुनिया उसको याद रखे। सराहना करे या ना करे वो तो बहुत बात की बात हुई, दिस इज़ फॉर द सेल्फ सेटिस्फेक्शंस। इतनी बड़े पैमाने पे अगर हम कंपनी ना भी खोल पाए तो कहाँ किसी को दिखाना है अपना रिपोर्ट कार्ड। एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन ही क्यों ना दे दे अपने देशवासियों के लिए, अपने देश के लिए। बस मेरा यही कहना था। आपसे बाद में फिर मुलाकात करूंगी। शुक्रिया।